Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Dhyaye Nityam Mahesam Rajatagiri Nibham చారుచంద్రవతంసం రత్నాకల్పోజ్వలాంగం పరసమృగవరా వీతిహస్తం ప్రసన్నం పద్మాసీనం సమంతాత్ స్తుతమమరగణిర్ వ్యాఘ్రకృత్యం వసానం విశ్వాద్యం విశ్వవంద్యం నిఖిలభయహరం పంచవక్త్రం త్రినేత్రం నారాయణం పద్మభవం వశిష్ఠం శక్తిం చ తత్పుత్ర పరాశరం చ వ్యాసం సుఖం గౌడపదం మహంతం గోవింద యోగీంద్రమథాస్య శిష్యం శ్రీ శంకరాచార్యమథాస్య పద్మ పాదంచ హస్తామలకంచ శిష్యం తంతోటకం వార్తికకారమన్యాన్ అస్మత్పురుం సంతతమానతోస్మి విశుద్ధజ్ఞానదేహాయ త్రివేది దివ్యచక్షుసే శ్రేయః ప్రాప్తినిమిత్తాయ నమః సోమార్ధధారిణే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి.
కృష్ణ యజుర్వేదీయ శ్వేతాశ్వతర ఉపనిషత్ కి అంతర్గత ఛఠే అధ్యాయమే తీర్వా మంత్ర హై.
నిత్యో నిత్యానాం చేతనశ్చేతనానాం ఏకో బహూనాం యో విదధాతి కామాన్ తత్కారణం సాంఖ్యయోగాదిగమ్యం జ్ఞాత్వా దేవం ముచ్యతే సర్వపాశై న తత్ర సూర్యో భాతి న చంద్రతారకం నేమా విద్యుతో భాంతి కుతోయమగ్ని తమేవ భాంతమనుభాతి సర్వం తస్య భాషా సర్వమిదం విభాతి ఏకోహంశో భువనస్యాస్య మధ్యే సయేవాగ్నిః సలిలే సన్నివిష్టః తమేవ విదిత్వాతి మృత్యుమేతి నాన్యః పంథా విద్యతే అయనాయ స విశ్వకృద్ విశ్వవిదాత్మయోనిర్ జ్ఞః కాలకారో గుణి సర్వవిద్యః ప్రధానక్షత్రజ్ఞ పతిర్గుణేశః సంసార మోక్ష స్థితి వంద హేతు. పరమాత్మా కే బారే మే వర్ణన్ కర్ రహే హై. జిస్ కో జాన్ లేనే పర్ సమస్త పాప్ అప్నే ఆప్ పాస్ అప్నే ఆప్ ఖుల్ జాతే హై. జ్ఞాత్వాదేవం ఉచ్యతే సర్వపాశై. జితని భీ సంసార మే ప్రాణి హై సభీ పశు హై. భలే హీ హమ్ లోగ్ అప్నే కో మనుష్య మానే, జైసే పశు మే హీ గాయ ఔర్ భైంస్ ఆది భేద భేద హోతే హై, ఉసీ తరహ పశు మే హీ మనుష్య కా భేద హై. మనుష్యో కో యే బాత్ థోడీ బురీ లగ్తీ హై, जब उसको कह देते हैं कि तुम पशु हो, उसको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन सारा व्यवहार वो पशु का करता है तो करे क्या? जब भी देखो, हर बार किसी भी काम में किसी भी बात को कहो तो क्या है, करे महाराज, बंधन है। पशु होने के लिए सिर में सिंह होना चाहिए, जरूरी नहीं है। गधे के नहीं है तो पशु हो रहा है कि नहीं? पशु होने के लिए पूंछ होना ही चाहिए, जरूरी नहीं है। पूंछ और सिंह बिना भी पशु हुआ जा सकता है, होते हैं। इसलिए तो किसी साहित्यकार ने कहा, नीतिकार ने कहा, साहित्य संगीत कला विहीनम साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनम। जिसके हृदय में साहित्य और अन्य शास्त्र की मर्यादा का बोध न हो, वह वास्तव में सिर और सिंह और पूंछ रहित पशु है। या जिस अर्थ में पशु को परिभाषित किया जा रहा है, पाशवद्दो ही पशवः पाश पंचविदो स्मृतः। शैव शास्त्र में पशु शब्द की इस प्रकार से परिभाषा की गई है, जो पाशों से बंधा हुआ होता है उसको पशु कहते हैं। जीव को बांधने के लिए, विशेष करके मनुष्यों को बांधने के लिए पांच पाश हैं, और हम उन्हीं पांच पाशों से बंधे हुए होने के कारण हमारी संज्ञा पशु में हो गई है। पशु होने पर भी इसको पालन करने वाला तो कोई न कोई है, क्योंकि संसार में लोक व्यवहार में भी दिखता है कि पशुओं को भी मनुष्य पालन करते हैं। कुत्ते को हम पशु के कोठी में लेते हैं तो कुत्ते को भी हम पालते ही हैं। गाय भैंसों को हम पशु की कोठी में लेते हैं तो गाय भैंसों को पालते ही हैं। हाथी घोड़े को हम पशु के रूप में लेते हैं तो हाथी घोड़े भी हम पालते हैं। तब फिर मनुष्य को पशु के कोटि में ले लिया गया तो मनुष्य को कौन पालता है? तो बताया कि इसको पालने वाला नेपाल में बैठा है, पशुपति। इसलिए तो उसका नाम पशुपति है, पशुम पाती थी पालयती थी पशुपति, नेपाल में बैठा है, सबका पालन पोषण करता है। ये पशुपना कब तक रहेगा जीव में? तो ये बताया कि जब तक उसको नहीं जानता तब तक ये बंधा ही रहेगा। किसको जानना पड़ेगा भाई? उपवास से मुक्त होने के लिए नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम। जो नित्य का नित्य है उसको जानेगा तो वह सभी पाश से मुक्त हो जाएगा। वेदांत और कर्मकांड में यही अंतर है, ब्रह्म विद्या और कर्म विद्या में यही अंतर है कि कर्म विद्या किए बिना फलीभूत नहीं होता और ब्रह्म विद्या करने की आवश्यकता नहीं, जानते ही फलीभूत होते हैं। तो एक तो करके फलीभूत होता है, दूसरा जानकर फलीभूत होता है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, बहुत सुंदर व्याख्या हुई है इसका। नित्यानाम नित्य बहुवचन प्रयोग किया है, नित्यों में जो नित्य है। कौन है नित्य भाई? तो दो प्रकार के नित्य हो गए यहां। वेदांत तो वास्तव में यह कहता है कि नित्य तो एक ही है, उसके अलावा सब अनित्य है। एक नित्य परमात्मा है, परमात्मा के अलावा सभी अनित्य हैं। फिर ये क्यों कहा कि नित्यो नित्या नाम नित्य, नित्यों में जो नित्य है? कहा कि वास्तव में वेदांत जीवों को भी नित्य मानता है, जीव को इसीलिए नित्य मानता है क्योंकि जीव उस परमात्मा का ही स्वरूप है, इसीलिए ये नित्य है। ये जीव की अनित्यता तो उपाधि के चलते प्रतीत हो रही है, वास्तव में उपाधि के अलावा उसका स्वरूप तो नित्य ही है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, इसीलिए वैष्णव धर्मों में दो प्रकार की चेतना मानते हैं, जीव चेतना और ईश्वर चेतना। दो चैतन्य हैं, एक जीव चैतन्य और दूसरा ईश्वर चैतन्य। यूं तो वेदांत में भी अध्यारोप करके चार प्रकार की चेतना की चर्चा हुई है, चित चतुर्विधम। एक ब्रह्म चैतन्य, दूसरा ईश्वर चैतन्य, तीसरा कूटस्थ चैतन्य, चौथा जीव चैतन्य। विद्यारण्य मुनि जी ने चैतन्य की इस प्रकार से चार विभाग किया है। इन चार चैतन्यों में से तीन चेतना सोपाधिक चेतना है और एक चेतना निरुपाधिक चैतन्य है। ब्रह्म निरुपाधिक चैतन्य है, ईश्वर कूटस्थ और चिदाभास ये सोपाधिक चैतन्य है। इनका जो भेद है उपाधि के चलते है। उदाहरण देकर विद्यारण्य मुनि जी ने पंचदशी में समझाया इस बात को, चित चतुर्विधम। जैसे एक ही आकाश चार प्रकार से प्रतीत होता है, उसी तरह एक ही चैतन्य चार रूप में प्रतीत होता है, महाकाश, घटाकाश, जलाकाश और मेघाकाश, एक ही आकाश। जो महाकाश है उस महाकाश में घड़ा बना, जब घड़ उपाधि आ गया तो घड़ के अंदर घटावच्छिन्न आकाश आ गया, तो घटाकाश हो गया। अब जब घटाकाश सिद्ध हुआ तो घड़े में पानी भरा गया, क्योंकि घड़े का प्रयोजन ही पानी भरने के लिए है। तो घटाकाश में जब पानी भरा गया तो उस पानी में महाकाश का प्रतिबिंब पड़ा, तब उसको कहते हैं जलाकाश। और महाकाश में जो मेघ दिख रहे हैं, क्योंकि वह पूरा का पूरा मेघ पानी है, जल समूह है, जलकण समूह है, तो जल ही है। इसका मतलब है कि एक बूंद पानी में भी पानी होने के कारण आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है, तो उसके कण जो छोटे छोटे तुषार हैं, बादल के जो जिसको हम बादल कहते हैं, पानी के सूक्ष्म कण समूह हैं, तो उसमें भी आकाश का प्रतिबिंब पड़ रहा है, उसको मेघाकाश कहते हैं। मेघाकाश अनुमान से सिद्ध करते हैं, महाकाश तो हम लोग अब अनुभव कर ही रहे हैं, घटाकाश भी हम अनुभव करते हैं। घड़े के अंदर जब पानी भर देते हैं तो जलाकाश भी हम अनुभव करते हैं। कहीं भी तालाब है, तालाब के स्वच्छ जल है, उसके किनारे जब हम खड़े होकर उस तालाब में सरोवर में देखते हैं, तब वहां अंतरिक्ष और अंतरिक्ष सहित अंतरिक्ष में रहने वाले बादल, चंद्रमा, तारे, सूर्य, उन सभी का प्रतिबिंब पड़ता है, तो जब सूर्य का चंद्रमा तारे आदि का जो प्रतिबिंब पड़ता है पानी में, उसके साथ साथ वो प्रतिबिंब में जो दूरीपना का जो भ्रांति है, प्रतीति है, वही आकाश का प्रतिबिंब है। क्यों? आकाश यूं तो अरूप होने के कारण उसका स्पष्ट कोई प्रतिबिंब पड़ना संभव नहीं है, क्योंकि हम आकाश के स्वरूप को ही दूरी के रूप में हम आकाश के स्वरूप को मानते हैं और वही दूरी का प्रतिबिंब पानी में पड़ता है। चंद्रमा आकाश में बहुत दूर है, तब उस पानी में जब प्रतिबिंब देखते हैं तो चंद्रमा पानी के प्रतिबिंब में भी दूर ही प्रतीत होता है। पानी जितना नजदीक है उतनी नजदीक क्या चंद्रमा का प्रतिबिंब का प्रतीत होता है? उस पानी में पड़े हुए चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है पानी के अंदर, उसको भी हमें देखते हुए ही लगता है कि बहुत गहराई में बहुत दूर है चंद्रमा। इसकी प्रतीति होती है कि नहीं? यही आकाश का प्रतिबिंब है। चंद्रमा का प्रतिबिंब तो चंद्रमा के रूप में है ही है, लेकिन वो चंद्रमा दूरी के रूप में जो प्रतीत हो रहा है वो दूरी, वही आकाश का प्रतिबिंब है। तो इस प्रकार से हम जलाकाश का भी अनुभव करते हैं, परंतु मेघ में जो आकाश है ये हमको अनुभव में नहीं आता, तब उसको अनुमान से सिद्ध करते हैं। तो किसी दार्शनिकों ने ईश्वर को अनुमान से सिद्ध किया है, नैयायिकों ने ईश्वर को अनुमान से सिद्ध करते हैं। वे लोग विशेष करके ईश्वर सिद्धि के लिए ही अनुमान का प्रयोग करते हैं। तो जैसे चित चतुर्विधम विद्यारण्य मुनि जी कहते हैं, उसी प्रकार से यहां चेतना दो प्रकार की है। दो प्रकार के चैतन्य हैं, लेकिन दोनों ही नित्य है। जीव भी नित्य है और परमात्मा भी नित्य है। नित्यो नित्यानाम, जो समस्त नित्य जो जीव हैं, स्वरूपतः नित्य जो जीव हैं, उपाधिता नहीं। यूं तो जीवात्मा की उपाधि अनित्य है, जीवात्मा नित्य है। जीवात्मा कुटस्थ के रूप में नित्य है, जीवात्मा चिदाभास के रूप में, उपाधि के रूप में अनित्य, क्योंकि उसकी उपाधि ज्ञान होने के बाद उपाधि का बाद होता है, और ज्ञान होने के बाद उपाधि का बाद होने से ही वह निरुपाधिक जो चेतन है वह परमात्मा के साथ एक होता है। जैसे घड़े के उपाधि से घटाकाश महाकाश से अलग हुआ सा प्रतीत होता है, घट उपाधि के नष्ट होते ही घड़े के अंदर का जो आकाश है महाकाश से अभिन्न होता है, इसी प्रकार से कार्य और करण उपाधियों से जीवात्मा को परमात्मा से अलग प्रतीत हो रहा है और अलग माना जा रहा है। कारण उपाधि और कार्य उपाधि का नष्ट होने पर, करण उपाधि और कार्य उपाधि के नाश होते ही वह चेतना ब्रह्म रूप से एक होने के कारण उसको नित्य कहा। नित्यो नित्यानाम, शंकराचार्य कहते हैं, नित्यो नित्यानाम जीवानाम मध्य तन नित्यत्वेन तेषाम अपि नित्यत्वम इत्यभिप्राय अथवा पृथ्व्यादीनाम मध्य नित्यः। दूसरा विकल्प उठा दिया शंकराचार्य जी ने। सामान्य लौकिक व्यक्ति पृथ्वी को नित्य मानता है, वेदांत विचार करने वाला व्यक्ति ही पृथ्वी को अनित्य मानता है, लेकिन सामान्य जो लौकिक व्यक्ति है वह तो पृथ्वी को नित्य मानता है। यहां तक कि व्यक्ति तो सभी चीज को नित्य मानना चाहते हैं, उनके बुद्धि और उनके भावना तो यही है कि शरीर भी नित्य ही मानते हैं, दूसरों के मरते हुए देखते हैं, अपने मरते हुए तो देखते नहीं, इसीलिए सभी मानते हैं कि मैं नित्य हूं। खुद अपने मरते हुए देखे तब उसको पता चले कि हम मैं अनित्य हूं, लेकिन खुद को मरते हुए तो कोई भी देखता नहीं है, कोई देखता है, इसलिए हर व्यक्ति कह देता है कि वो अनित्य हो सकता है जो मर के गया, लेकिन हम तो जिंदे हैं, हम क्यों अनित्य हों भाई। हर व्यक्ति यही कहता है। किसी को कहा जाए कि तू अनित्य है तो वो कहेगा क्या मूर्ख की बात करते हो, अनित्य वो है जो मर के गए, हम तो जिंदे हैं, हम कैसे अनित्य होंगे भाई। बोले तुम भी मरने वाले हो, तो मरने वाले हो ये तो फिर अनुमान हो गया महाराज, अनुभव तो नहीं बता रहा है ना कि हम मरने वाले हैं, अनुभव तो हम जिंदे हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी अपनी मृत्यु का अनुभव नहीं करता, इसलिए वो अपने को एकदम निश्चिंत हो रहा है मुझे मरना ही नहीं है। इसलिए तो महाभारत में यक्ष प्रश्न, युधिष्ठिर के सामने अनेक यक्ष प्रश्न थे, क्योंकि उस यक्ष के प्रश्नों का उत्तर न देने के कारण अन्य चार भाई तो मृत्यु को प्राप्त हो गए वहीं। और जब युधिष्ठिर भी गए वहां पानी पीने के लिए, प्यास तो लगी हुई थी, यक्ष ने सावधान किया कि पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो तभी पानी पियो भैया, यदि मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना तुमने पानी पीने की धृष्टता की तो तुम्हारी भी वही अभी होगी जो तुम्हारे इन चार भाइयों की हुई है। युधिष्ठिर सावधान हो गए तो बोले क्या प्रश्न है पूछो। तो अनेक प्रश्नों में से एक प्रश्न है कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर ने उसका उत्तर दिया है, अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरे। हे यक्ष, प्रतिदिन प्राणी यमराज के ग्रास हो रहे हैं, यमराज का काल कबीलित हो रहे हैं, यमराज के यहां पहुंच रहे हैं, मरते जा रहे हैं, और अपने ही हाथ से अपनी मां के, अपने हाथ से अपने बाप के, अपने हाथ से अपने गांव के बंधु बांधवों का विधिवत चिताग्नि लगाकर उसने संस्कार किया और राख बनता हुआ आंख से देखा, और बचे हुए राख को भी पानी में डाल डूल कर उसने, गंगा के किनारे संस्कार करने वाले तो नदियों के किनारे में संस्कार करने वाले राख को भी धो धा के बगा देते हैं। तो अपने हाथ से ये सब होता हुआ देख रहा है, फिर भी वह निश्चिंत है कि मुझे ये अवस्था नहीं होगी, तो अपने आप को तो निश्चिंत है, तो मरा तो वो मरा, हम क्यों मरे। इससे बढ़कर और कोई आश्चर्य नहीं हो सकता है अक्ष। तब अक्ष ने कहा कि तुम ठीक विचार करने वाले हो, तुम पानी पी सकते हो, पानी एक प्रतीक है, पानी ये संसार और विषय का एक प्रतीक है, विचार करने वाला ही विषय को सेवन करता है तो उस सेवित विषय से वो बच सकता है, और विचार किए बिना ही विषयों का सेवन करने वाला वह इन विषयों से बच नहीं सकता है, तुम पी लो। तो यक्ष की आज्ञा से युधिष्ठिर ने पानी पी ली, तो युधिष्ठिर को कुछ नहीं हुआ। पहले पदार्थ के बारे में अनुसंधान करके निश्चय होकर तब पदार्थ का सेवन करेगा तो पदार्थ से कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, अन्यथा पदार्थ को विचार किए बिना यदि पदार्थ का उपभोग करता है तो उस पदार्थ ही उसके विनाश का कारण बन जाता है। तब यक्ष कृपा से, वो यक्ष और कोई नहीं था, परमात्मा ही था, जैसे केन उपनिषद में भी यक्ष प्रश्न आता है, उसकी कृपा से अन्य मृत चारों भाइयों का जीवन प्राप्त हो गया। तो नित्यो नित्यानाम, शंकराचार्य जी कहते हैं जगत में जितने भी जीव आदि हैं, सामान्य अज्ञानी तो सारे संसार को नित्य मानता है, पृथ्वी को नित्य मानता है, जल को नित्य मानता है, तेज आयु वायु आकाश आदि को नित्य मानता है, और जैसे कि दार्शनिकों में भी नब्बे न्याय दर्शन है एक, न्याय दर्शन तो पांच पदार्थों को नित्य मानता है, दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये इसको दिक् बोलते हैं, इसको भी नित्य मानते हैं वो लोग, काल जो समय है उसको नित्य मानते हैं, दिक् काल मन उसको भी नित्य मानते हैं, आत्मा उसको भी नित्य मानते हैं, और साथ ही परमाणु उसको भी नित्य मानते हैं। इसलिए पृथ्वी दो रूप में विद्यमान है उनकी दृष्टि से, एक तो अनित्य रूप में कार्य रूप पृथ्वी अनित्य रूप में है, कारण रूप परमाणु नित्य रूप में है। इसी तरह जल भी दो रूप में मानते हैं, कार्य रूप जल जो है वह अनित्य है और कारण रूप परमाणु जल वो नित्य है, तो परमाणु को नित्य मानते हैं। पांच वस्तु नैयायिक लोग नित्य मानते हैं, परमाणु मन आत्मा दिक् और काल, नौ में से ये जो पांच हैं उनको नित्य मानते हैं, अन्य जो चार हैं वो अनित्य हैं। उनके दृष्टि से भी यही कहा जा सकता है कि नित्यो नित्यानाम, जो मन दिक् काल आत्मा और परमाणु, इन सभी में वो एक नित्य है यानी आत्मा। वे लोग आत्मा शब्द से ब्रह्म को नहीं लेते, आत्मा शब्द से मन में प्रतिबिंबित जो चिदाभास है उसी को आत्मा लेते हैं, जीवात्मा को ही आत्मा मानते हैं। और पौराणिक लोग कहते हैं कि नित्यो नित्यानाम, इंद्र ब्रह्मा आदि जितने भी हैं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र आदि, सामान्य दृष्टि से तो हम पौराणिक लोग इनको भी नित्य मानते ही है ना, लेकिन उन ब्रह्मा आदि जो नित्य हैं, हिरण्यगर्भ आदि जो नित्य हैं, उन नित्यों में भी वो परम नित्य है, क्योंकि इनकी जो नित्यता है उसी के चलते सिद्ध है। वेदांत दर्शन के अनुसार जीव की जो नित्यता है वो तो ब्रह्म के चलते ही नित्यता है, उसकी नित्यता से ये नित्य है। तो नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, इसी तरह चेतनाओं में चेतन,